जलती शमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए।
प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा।
सूफी संत बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध शहर फरीदकोट में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की शाखा संचालिका के रूप में आदरणीय प्रेम दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1950 में अमृतसर साहब में हुआ। धार्मिक वृत्ति, सेवा भाव, शांति प्रिय और सबसे मिलकर चलना ये आपके विशेष गुण हैं। सन 1965 में आपको ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र अमृतसर से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी वर्ष आप पवित्र धरनी माउंट आबू आईं और शिव पिता के साकार माध्यम पिताश्री ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी से मिलने का सौभाग्य आपको मिला। दिव्य और अलौकिक वातावरण से प्रभावित होकर आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। सन 1959 से 1975 तक आपने मुजफ्फरपुर, अमृतसर, रोहतक, चंडीगढ़ में सेवाएं दी तथा 1976 से फरीदकोट में आप अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं। प्रभु संदेश जन जन तक पहुंचाने हेतु आपने अनेकानेक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जैसे पदयात्रा, मेला, महिला सशक्तिकरण सम्मेलन, साइकिल यात्रा इत्यादि। वर्तमान समय 4 सेवा केंद्र, 7 उप सेवा केंद्र, 15 गीता पाठशालाओं सहित 2000 से भी अधिक विद्यार्थी आपकी पालना में प्रभु प्रेम की अनुभूति कर रहे हैं।
और बचपन से ही हमारी रुचि, हमारा परिवार धार्मिक विचार होने के कारण हमको हर धर्म स्थान पर लेकर के जाते थे। जैसे कि श्री अमृतसर साहब में हम माता जी के साथ हर रविवार को सेवा करने के लिए जाते थे, तो ऐसा कहूंगी कि भाग्य का उदय हुआ ये कि मेरी जो बड़ी दीदी है, बहन है, लौकिक में उसकी शादी हुई बटाला में। तो जब उसकी शादी हुई तो उसके पति का जो भाई था वो हमारे घर में शादी के बाद आए। उन्होंने ये देखा कि ये जो परिवार है ये बहुत धार्मिक विचारों का है, और मातेश्वरी जी उन दिनों में अमृतसर आए थे और वो वहां पर बटाला में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाया करते थे। जब वो हमारे घर में आए तो हमारे माता जी को उन्होंने बोला कि ऐसे हमारे मातेश्वरी जी यहां पर आए हैं तो उनका प्रवचन होगा, तो आपको हम लेने के लिए आए हैं। तो हमारे माता जी को तो बहुत दिलचस्पी होती थी, कोई भी धार्मिक नेता कोई धर्मात्मा आते थे तो वहां पर वो बहुत खुशी से जाते थे। तो वो भाई साहब मेरे माता जी को लेकर के अमृतसर आश्रम में जब मातेश्वरी जी के प्रवचन सुनने के लिए गए तो मेरे माता जी को मातेश्वरी जी ने जो भी वहां पर प्रवचन किए आत्मज्ञान की बातें परमात्म ज्ञान की बातें उनको बहुत अच्छी लगी। और घर में आकर के जब उन्होंने हमें बताया कि आज मैं वहां पर गई और मुझे आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान की बातें पता लगी, लेकिन वो हमें बता नहीं पाए कि आत्म ज्ञान क्या होता है। मेरे लौकिक माता जी ने कहा कि चलो आपको ब्रह्मा कुमारियों के दर्शन करा करके लाती हूं। तो मैंने भी सोचा ठीक है, हमको तो दर्शन करने का तो था ही, खुशी होती थी, शौक था, तो मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ले गए। तो वहां पर एक बहन जी थे, उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, बड़ा अच्छा लगा वहां पर जाकर के। तो उन्होंने कहा कि इस बच्ची को भेजा करो, कन्या को ये 7 दिन का कोर्स करे। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी 7 दिन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दूसरे दिन मैं फिर चली गई वहां पर। तो वहां पर उस बहन जी ने मेरे को ज्ञान की बातें सुनाई, बहुत अच्छी लगी। तीसरे दिन मैं फिर जब आश्रम में गई तो मुझे चंद्रमणि दादी जी, जो कि हमारे पंजाब हरियाणा हिमाचल के जोन इंचार्ज, वो वहां पर मिले चंद्रमणि दादी जी। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बात की, मैंने नमस्ते की और उन्होंने मेरे को पूछा कि आपको योग करना आता है। मैंने कहा कि नहीं दीदी मुझे तो योग करना नहीं आता है। तो दीदी ने कहा कि चलो मैं आपको योग कराती हूं। तो मैंने कहा ठीक है कैसे करना है। दीदी सामने बैठ गई और मुझे भी बिठा लिया और बोला कि आप मेरे मस्तक की तरफ देखना। तो चंद्रमणि दादी ने जब दृष्टि देनी शुरू की तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मुझे दीदी दिखाई नहीं दी और दीदी से लाइट का साक्षात्कार हुआ और गीत के शब्द अंदर में गूंज रहे थे, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। उसमें ये जो शब्द आए, जागो उठो लूटो परम पिता का प्यार, आज तुम्हारे द्वार खड़ा है जग का सर्जनहार, जब ये शब्द सुने और मेरे को कुछ मालूम नहीं था ज्ञान, परंतु ऐसे आभास हुआ कि यही मेरा घर है, मुझे यही रहना है, मुझे और कोई घर बसाना नहीं है। और उनको देख करके मुझे लगा कि इन्होंने अपनी जीवन अगर ऐसी बनाई है, और दूसरा ये भी मालूम पड़ा कि मातेश्वरी जी भी 15 वर्ष की आयु में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में उन्होंने यज्ञ में अपना जीवन समर्पित किया। तो मेरे मन में एक दृढ़ निश्चय हो गया कि 15 साल की आयु में ही मुझे ये अपनी जो है ब्रह्मा कुमारी लाइफ बनानी है और मुझे भगवान की सेवा करनी है, पवित्र जीवन व्यतीत करना है। और एक संकल्प चला कि ये भगवान ही मेरा पति है, भगवान ही के साथ मेरे सर्व संबंध है, मुझे और कोई दूसरा घर बसाना नहीं है। दीदी ने मुझे एक बात बहुत अच्छी बताई, उन्होंने कहा कि प्रेम देखो अगर तुम्हारी ईश्वरीय लगन है, अगर तुम्हारा बाबा से प्यार है, तो तुम्हारे को दुनिया की कोई हस्ती रोक नहीं सकती, तुम्हारा योग अच्छा है तो मैं दीदी की बात सुनकर के घर आ गई। तो जब भी मेरे को कभी रुकावट आती, कोई बात ऐसे बोलते, तो मैं योग में बैठ जाती। तो मुझे एक बात याद है कि मैं सुबह 3 बजे उठ करके योग में बैठी थी, तो मेरे माताजी ने भी देखा, पिताजी ने भी देखा कि ये जो लड़की है ये इस समय भगवान को याद कर रही है। तो थोड़े समय के बाद एक वंडरफुल बात कि हमारे लौकिक माताजी भी अपनी समाधि में बैठा करते थे, जैसे वो भक्ति करते थे, ईश्वर को याद करते थे, तो उस समय उनको साक्षात्कार हुआ कि शिव भगवान ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके ये ज्ञान सुना रहे हैं। तो जब हमारे माताजी को ये साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने सुबह ही मेरे को बोला कि आप दीदी को टेलीफोन कर दो कि माताजी ने छुट्टी दे दी है मधुबन जाने के लिए, तो आप मेरी सीट बुक करा दो। तो उन दिनों में टेलीफोन होते थे, तो मैंने टेलीफोन पड़ोस में जाकर के किया, घर में टेलीफोन नहीं था, पड़ोस में जाकर के टेलीफोन किया, दीदी को बोला कि दीदी ऐसे माताजी ने आज छुट्टी दी है माउंट आबू जाने के लिए, तो आप मेरी सीट बुक कराओ। जिस रात में शिव भोलानाथ आए हैं उनसे मिलने की इतनी तमन्ना थी, इतनी लगन थी कि हम सुबह जब ट्रेन से उतरे तो ऐसे लगा कि हम जल्दी जल्दी जाकर के बाबा को मिले। तो फिर संदेश दीदी ने दिया कि अभी आप नहाओ धोवो और बाबा शाम को हिस्ट्री हॉल में मिलेंगे पांडव भवन में। हमको ये था कि शाम 5 तो बहुत देर से, इतनी देर के बाद हम बाबा को मिलेंगे, हमें तो इतनी तमन्ना थी कि हम अभी बाबा को मिले। तो ऐसे ही हुआ कि भगवान हर व्यक्ति की आश पूरी करता है, मेरी भी आश पूरी हुई। उस समय दीदी आ रहे थे और बाबा झोंपड़ी से निकल करके सामने से आ रहे थे, हमने बाबा को देखा और एकदम बाबा को भाकी पहन ली और बाबा ने बहुत प्यार किया। बाबा कहते बच्चे आ गए, मैंने कहा जी बाबा। अच्छा बच्चे, बाबा फिर शाम को आप बच्चों को मिलेंगे। और मेरी भी वारी आई प्यारे बाबा से मिलने के लिए। जब हम बाबा के आगे आकर के बैठे तो हमारी आंखों से तो पानी बह ही रहा था। बाबा ने अपनी गोद में बिठाया, भाकी पहनी, दृष्टि दी। उसके बाद बाबा ने पूछा बच्ची आगे का मिली हो? मैंने कहा जी बाबा, 5000 वर्ष पहले मिले थे। तो बाबा ने प्रश्न पूछा बच्ची कौन सा पद पाया था? मैंने कहा बाबा महारानी का। परंतु फिर मुझे याद आ गया 10-12 दिन पहले मुरली बाबा की चली थी, उसमें ये था कि 21 जन्मों में जो फीमेल है वो मेल भी बन सकती है। तो मैंने फौरन बाबा को उत्तर दिया, मैंने कहा बाबा महाराजा पद भी पाया था 21 जन्मों में। तो बाबा बहुत खुश हुए। बाबा कहते चंद्रमणि इस बच्ची के माता पिता का पत्र लाओ, ये बच्ची बाबा की बहुत सेवा करेगी। तो जब दीदी को बोला कि आप इस बच्ची का लेटर लाओ, तो फिर चंद्रमणि दादी ने कहा कि बाबा अभी ये बच्ची घर से आई है, अभी इसके माता पिता की छुट्टी नहीं है, जब ये अगली बार आएगी तो फिर इसके माता पिता का पत्र लाएंगे, फिर आप इसको कहीं भी किसी भी सेंटर में भेज सकते हैं। तो इतनी खुशी हुई। और हम ये सोचते हैं कि बाबा ने जो ये कहा कि ये बच्ची बहुत सेवा करेगी, और वाकई ही बाबा के वो महावाक्य मेरे लिए वरदान सिद्ध हुए। आज 50 वर्ष हुए मुझे ईश्वरीय सेवा में, और इतनी खुशी है कि 50 वर्ष नहीं लेकिन 50 मिनट लगते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे आज क्लास के बाद मम्मा सब बच्चों को अंगूर देगी। मम्मा उसकी तबीयत उस समय ठीक नहीं थी, और जब सुबह क्लास में मुरली चलती थी, बाबा चलाते थे, तो क्लास के बाद सब बच्चे, जो इस समय बाबा का कमरा है इसके पीछे मम्मा का कमरा होता था, तो लाइन वार सब बच्चों को बाबा मम्मा के कमरे में लेकर के जाते थे। मम्मा बेड पे थे और बाबा साथ में कुर्सी लेकर के बैठ जाते थे, और मम्मा को जो दादी थी यमुना दादी थी मम्मा की ब्राह्मणी, तो मम्मा के हाथ में वो अंगूर देती थी और बाबा सब बच्चों को दृष्टि देते थे प्यार से। पहले हम बाबा से दृष्टि लेते थे, फिर हम मम्मा से दृष्टि लेते थे और मम्मा अपने हाथों से हम बच्चों को अंगूर देती थी। आज भी वो अंगूर ऐसा महसूस होता है कि मम्मा हमारे साथ है और वो अंगूर दे रहे हैं। ऐसे ही बाबा मुरली के बाद कोई ना कोई प्रोग्राम रखते थे। क्लास के बाद एक दिन कोई पत्थर के कोयले की भट्टी जलाई और रखी और बाबा ने ये कहा कि आज मम्मा अपने हाथों से सब बच्चों को मान्नी खिलाएगी। अब मान्नी क्या होती है हमें मालूम नहीं। क्लास के बाद हम लोग लाइन में लगे और एक कुर्सी में बाबा बैठे थे, दूसरी कुर्सी पे मामा बैठे थे और भोली दादी सब बच्चों को जो भट्टी थी, भट्टी के ऊपर वो छोटी छोटी रोटी बन रही थी, एक बहन जो है उस पर मक्खन लगा रही डाल रही थी और बूरा चीनी, और मम्मा अपने हाथों से एक एक बच्चे के मुंह में गिट्टी डाल रही थी और बाबा बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे थे। और वो सीन आज भी मैं याद करती हूँ कि धन्य है हमारी आत्मा जिसने सृष्टि के आदि पिता ब्रह्मा बाबा और आदि देवी सरस्वती जी के हाथों से ये गिट्टी खाई, ईश्वरीय पालना ली। बाबा आज बच्चों को गो सुन कम सुन की टोली खिलाएगा। और ऐसे नहीं, बाबा साथ में उसका रहस्य भी बताते थे, बच्चे बाबा आप बच्चों को ये तीन चीज क्यों दे रहा है, ये जो बादाम है ये आपके दिमाग को तरावट देगा और आपके दिमाग में ज्ञान रतन अच्छी तरह से भरपूर होंगे। और बच्चे ये जो इलायची बाबा दे रहे हैं आपका जीवन दिव्य गुणों की खुशबू देगा और कितनी आत्माओं को उसकी प्रेरणा देगा। और बच्चे ये जो मिश्री है ये आपका जीवन मीठा बनाएगी और धारणाओं से मजबूत करेगी और कितनी आत्माओं का आप कल्याण करेंगे। उस समय तो कुछ मालूम नहीं था लेकिन बाबा की ये तीन बातें याद हैं और बाबा ने गोद दी और मुंह में वो हमारे को मिश्री लैची बादामी दी। हम बाबा को पत्र लिखा करते थे और बाबा के पत्र आते थे तो उसमें भी नाम जब होता था तो बहुत खुशी होती थी। आदरणीय बड़े प्रकाशमणि दादी जी ने टीचर्स की योग बैठी रखी थी, हमें उसमें जाने का गोल्डन चांस मिला। हमने टीचर्स ने पूछा कि दादी आप क्या पुरुषार्थ करती हैं, तो दादी ने बहुत अच्छी बात बताई। दादी कहती मैं हमेशा ये पुरुषार्थ करती हूँ कि मुझे शिव बाबा ने जो खुशी दी है वो अविनाशी है और कोई भी कोई बात कहता है तो मैं कभी फील नहीं करती, कभी अशांत नहीं होती। क्यों? क्योंकि मुझे शिव भोलानाथ ने जो अविनाशी खुशी दी है और किसी के दो शब्द मेरी खुशी को गायब कर दें ये अविनाशी खुशी नहीं है। और संदेशी दादी के पास जब रही तो मैं उस समय 20 वर्ष की मेरी आयु थी और मैंने दादी जी से ये सीखा कि अतिथि देवो भव, किसी भी समय बे टाइम कभी भी कोई मेहमान आ जाता था तो दादी बहुत प्यार से खाना खिलाती थी और दादी ने कहना प्रेम मेहमान भगवान होता है और जो भी बाबा के घर में आए उसकी आपने अच्छी तरह से खातरी करनी है। और मुझे याद आया एक महात्मा थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा अतिथि देवो भव के ऊपर, उन्होंने कहा कि देखो कोई भी मेहमान हमारे पास आता है, व्यक्ति आता है तो सबसे पहले आप उसे भोजन का आग्रह करें, भोजन स्वीकार कराएं। फिर उन्होंने कहा अगर आप भोजन स्वीकार नहीं करा सकते तो आप उनको पानी जरूर पिलाएं। फिर उन्होंने कहा अगर आप पानी भी नहीं पिला सकते तो आप उनको आसन पर विराजमान जरूर करें, आसन दे। फिर उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई अगर आप आसन भी नहीं दे सकते तो आप दो बोल मीठे जरूर बोले। कहते अच्छा अगर आप दो बोल मीठे भी नहीं बोल सकते तो आप मुस्कुरा दी और जब जब हम टीचर्स कभी जानकी दादी जी के पास जाते हैं तो जानकी दादी हमेशा दो बातें कहती है कि देखो आप टीचर्स राइट और रॉन्ग, पाप और पुण्य को समझ करके कर्म करो तो आप सदा ही सफलता प्राप्त करेंगे। आदरणीय अचल दीदी जी थे, उन्होंने भी हमारी बहुत पालना की। हम छोटे थे, जब कहीं बाहर जाते थे हम कन्याओं के लिए चाहे 20 चाहे 25 30 कन्याएं होती थी उनके लिए बहुत गिफ्ट लेकर के आते थे छोटी छोटी, और वो स्पेशल सब कन्याओं की योग बैठी कराते थे, एक एक को आगे बुलाते थे, दृष्टि देते थे और वो हमको गिफ्ट देते थे, तो उस समय इतना अच्छा लगता था। तो मैं समझती हूँ कि हम इतनी भाग्यशाली आत्माएं, और हमारे जो चंद्रमणि दादी थे उन्होंने तो हमारे को माँ पिता टीचर सखा हर प्रकार से हमारी पालना की, और उनकी पालना तो हम भूल नहीं सकते। हम चंद्रमणि दीदी के पास जब भी कभी बैठते थे जाकर के तो हम कभी अपनी समस्या नहीं लेकर के जाते थे, क्योंकि हमें अपने वरिष्ठ भाई बहनों के लिए एक सदा श्रद्धा भावना रहती है कि इन्होंने हमारी इतनी सेवा की है, हमारी आत्मा को इतना पावरफुल बनाया है, हमारे को इतना अच्छा जीवन दिया है, तो हमें अब जहां तक हो सके अपने वरिष्ठ भाई बहनों को सुख देना है, आज्ञा का पालन करना है, और इनके जो विशेषताएं हैं इन्होंने इतनी तपस्या की है इनको फॉलो करना है। और आज एक ही तमन्ना रहती है कि सब भाई बहने जो है उनको खुशी देनी है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर न बैठ ओ मंजिल के राही, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के राही, मंजिल भी मिलेगी जीने का मजा भी आएगा।
दिनचर्या में हर कार्य में दीदी बहुत एक्यूरेट चलते हैं और हर कार्य खुद करते भी हैं और करके दिखाते भी हैं और सिखाते भी हैं, बहुत प्यार से सिखाते हैं।
दीदी हमेशा कहते हैं आलस छोड़ेंगे तो खुशी प्राप्त होगी, बिना कुछ किए खुशी प्राप्त नहीं होती है। और दीदी कभी किसी को सेवा के लिए नहीं कहते, बल्कि दीदी खुद सेवा में लग जाते हैं और सब भाई बहन उनको पीछे फॉलो करते हैं। और दीदी से हम जब पूछते हैं दीदी आप योग कैसे करते हैं, तो दीदी कहते हैं मैं तो योग करती नहीं, मैं तो बाबा से प्यार करती हूँ। और योग कहते हैं तो भारी लगता है, प्यार कहते हैं तो सहज हो जाता है।
जैसा दीदी का नाम है वैसे ही दीदी प्रेम की मूर्त है। दीदी के अंदर हमने ये गुण देखा, उमंग उत्साह हमेशा ही बना रहा, कभी भी कोई परिस्थिति आती तो उमंग उत्साह का असर कभी कम नहीं हुआ, हमेशा ही उत्साह लेकर के ही आगे बढ़ते चले गए। और उनके अंदर हमारे को आगे बढ़ाने की भी भावना हमेशा बनी रही। हम जब भी कोई गलती करते तो कभी हमारे अंदर कोई भय नहीं हुआ, हम निश्चिंत होकर के दीदी को गलती बता देते और दीदी बड़े प्यार से उस गलती को सुनते और हमारे को आगे के लिए गाइडेंस देते और ये कहा करते थे कि आप ये गलती नहीं करना, नई गलती भले ही कोई कर लेना। इस तरह हमारे को अपनी माँ का प्यार मिला, माँ की पालना मिली।
तो मैं अक्सर दो चार लाइनें उनके लिए बोलता हूँ, तुझे खड़ा हुआ देखूं तो ब्रह्मा बाप दिखता, तुझे बैठा हो देखूं तो शिव निराकार दिखता, तेरी आंखों में देखूं तो परम धाम दिखता, तेरे चेहरे पर देखूं तो शांति धाम दिखता।
प्रेम दीदी जैसे साकार पालना लिए हुए हैं बाबा की, तो हमें अपने भाग्य पे नाज है कि ऐसे दीदी हमारे सन्मुख हैं, हम इनकी पालना में पल रहे हैं। पुरुषार्थ का प्रैक्टिकल स्वरूप तो इसके इनके जीवन से ही हम देख रहे हैं। बाबा निराकार बाबा हमें पवित्रता दिव्य गुणों की धारणा हमने कैसे करनी है उसकी अनमोल युक्तियां बताते हैं, लेकिन वो पवित्र जीवन दिव्य गुण संपन्न जीवन और कमल पुष्प समान जीवन कैसा होता है इसका साकार उदाहरण या आदर्श कहो वो दीदी जी के जीवन में ही हमारे सामने है।
सर्वविशेषताओं की खान है दीदी, सर्वविशेषताओं की खान है दीदी, हम बच्चों के लिए ईश्वर पिता का वरदान है दीदी, हम बच्चों के लिए ईश्वर पिता का वरदान है दीदी, बलिहारी उस पिता की जिसने तुम्हें रचा है, बलिहारी उस पिता की जिसने तुम्हें रचा है, साकार को न देखा साकार सामने खड़ा है, साकार को न देखा साकार सामने खड़ा है।